एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें हमारे घर यानी पृथ्वी से बहुत दूर सितारों के बीच ले जाएगी, है ना?
बिल्कुल, एक रोमांचक सफर होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं टेरेंस डिकिंसन की किताब द सोलर सिस्टम के बारे में।
हाँ, समझिए ये हमारे सौर मंडल की एक गाइड बुक है।
पर गाइड बुक सुन के ये मत सोचिए कि कोई उबाऊ स्कूल की किताब है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक रोमांचक टूर जैसी है। मैं हूँ आपका एक मेजबान
और मैं हूँ आपकी दूसरी साथी इस सफर में। तो सवाल ये उठता है कि आज इस विषय पर बात करना जरूरी क्यों है?
अच्छा सवाल है।
देखिए, आसमान को देखकर वो तारे, वो ग्रह, जिज्ञासा तो होती ही है। ये इंसान की फितरत है ना?
बिल्कुल, हमेशा से हम जानना चाहते हैं कि ऊपर क्या है, ये सब कैसे काम करता है।
और आजकल तो आप देखिए, अंतरिक्ष में जाने की एक नई होड़ सी लगी है।
हाँ, मंगल पर बस्तियां बसाने की बातें हो रही हैं, दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश, तो ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है।
सही कहा। और ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा ग्रह कहाँ है या कितना बड़ा है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें महसूस कराती है कि हमारा सौर मंडल कितना विशाल है, कितना अजीब और शानदार है।
हाँ, ये सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं है। डिकिंसन ने इसे तस्वीरों और आसान भाषा में एक पूरा अनुभव बना दिया है, एक तरह का ग्रैंड टूर।
तो इस अनुभव को रचने वाले गाइड यानी लेखक टेरेंस डिकिंसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
हाँ बिल्कुल। डिकिंसन साहब 1943-2023 कनाडा के बहुत जाने माने विज्ञान लेखक थे। खगोल विज्ञान पर उनका काम तो बहुत ही मशहूर था।
और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो कोई बड़े प्रोफेसर या पीएचडी वाले शोधकर्ता खगोलशास्त्री नहीं थे।
नहीं थे।
उनकी असली ताकत थी उनका दशकों का अनुभव, मतलब घंटों आसमान को निहारना
और फिर उन मुश्किल चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाना।
हाँ, और बढ़िया उदाहरणों और गजब की तस्वीरों के साथ उन्होंने कनाडा की मशहूर स्काई न्यूज मैगजीन शुरू की थी और नाइट वॉच जैसी कई बेस्ट सेलर किताबें लिखी।
उन्हें कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा भी मिला था।
वाह।
उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो खगोल विज्ञान के जो जटिल सिद्धांत होते हैं ना,
हाँ हाँ,
उन्हें आम इंसान की जिज्ञासा से जोड़ देते थे। उनकी किताबों में सिर्फ जानकारी नहीं, एक जुनून झलकता है।
हाँ, जैसे कोई दोस्त आपको रात में छत पर ले जाकर तारे दिखा रहा हो और उनकी कहानियां सुना रहा हो।
बिल्कुल। और वो उपमाएं देते थे, तुलनाएं करते थे कमाल की।
सही। तो अब आते हैं किताब पर, द सोलर सिस्टम। क्या है ये किताब असल में?
असल में ये हमारे सौर मंडल का एक बड़ा सचित्र गाइड है, जैसे हमारे ब्रह्मांडीय परिवार का एक फोटो एल्बम।
फोटो एल्बम, अच्छा का।
इसका मकसद यही है कि सौर मंडल हमारे लिए उबाऊ न रहे बल्कि आश्चर्यजनक लगे।
और ये दिखाया कि ये सिर्फ ग्रहों और पिंडों का झुंड नहीं है।
हाँ, बल्कि गतिशील बदलता हुआ परिवार है, ग्रह है, उनके चांद है और भी बहुत कुछ है। किताब ये पूछती है कि भाई ये जगह असल में कैसी है और ये सब बना कैसे।
और किताब का जो मूल विचार है वो ये कि अगर हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझनी है
तो
पहले अपने आस पड़ोस यानी सौर मंडल को समझना होगा। और सच कहूं तो ये पड़ोस हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा हिंसक और कहीं ज्यादा खूबसूरत है।
सही में ये ग्रहों के विज्ञान को समझने के लिए हमारी अपनी लैब है ना?
बिल्कुल। और किताब का अंदाज भी बड़ा साफ है, दिलचस्प है, और साथ में नासा और ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी की वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, वो तो बस कमाल है।
हाँ, उन्हें देखकर तो लगता है हम वहीं पहुंच गए। सफर शुरू होता है हमारे अपने तारे सूरज से और फिर हम एक एक करके बाहर की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलिए शुरू करें ये भव्य यात्रा।
हाँ बिल्कुल।
सबसे पहले थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि हम हैं कहाँ। देखिए, हमारा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है।
और मिल्की वे खुद ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाओं में से बस एक है।
सोचिए पैमाना कितना बड़ा है, दिमाग चकरा जाता है। सही में अगर सूरज एक संतरे जितना हो
तो
पृथ्वी कुछ मीटर दूर रखी एक सुई की नोक जितनी होगी और अगला तारा वो हजारों किलोमीटर दूर होगा।
बाप रे, अविश्वसनीय।
और इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांध कर रखने वाली ताकत है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी।
और इस सिस्टम का दिल, इसका इंजन, वो है हमारा सूरज।
हाँ, सौर मंडल का लगभग सारा वजन 99.8% इसी में है।
और ये कोई शांत आग का गोला नहीं है जैसा हम बचपन में सोचते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धधकता हुआ, बदलता हुआ, बहुत गतिशील तारा है। इसके एकदम केंद्र में, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है,
जहां हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनती है और जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है।
हाँ, और ये ऊर्जा फिर लाखों साल का सफर तय करके सतह तक पहुंचती है, जिसे हम फोटोस्फेयर कहते हैं, जो हमें दिखता है।
और इस सतह पर वो काले धब्बे दिखते हैं, सन स्पॉट्स।
हाँ, वो असल में थोड़े ठंडे मैग्नेटिक इलाके होते हैं, और कभी कभी सूरज जोरदार धमाके करता है।
सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस।
बिल्कुल, ये इतने ताकतवर हो सकते हैं कि पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट और बिजली ग्रिड तक को गड़बड़ा दें। सूरज ही इस पूरे सौर मंडल का इंजन है, मालिक है।
तो सूरज के बाद सबसे करीब कौन है?
सूरज के सबसे करीब है अंदरूनी चट्टानी ग्रह। सबसे पहले आता है बुध।
मर्क्यूरी, बुध बहुत तेज ग्रह है, सुना है।
हाँ, बहुत तेजी से सूरज का चक्कर लगाता है, और यहाँ तापमान में जमीन आसमान का फर्क है। दिन में भयंकर गर्मी, रात में जमा देने वाली ठंड।
और सतह
गड्ढों से भरी पड़ी है, लगता है जैसे किसी ने बमबारी की हो। ये इसके तूफानी अतीत की गवाही है।
लेकिन वहाँ कुछ हैरानी की बात भी मिली थी ना?
हाँ, नासा के मैसेंजर यान ने इसके ध्रुवों के पास जो गड्ढे हैं ना, उनमें पानी की बर्फ खोजी।
क्या, बुध पर बर्फ, इतनी गर्म जगह पर?
हाँ, वाकई अजीब है। शायद उन गड्ढों में कभी सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं।
कमाल है। अच्छा, बुध के बाद
अगला पड़ाव है शुक्र, वीनस, पृथ्वी की जुड़वा बहन।
हाँ, क्योंकि आकार लगभग पृथ्वी जितना है, लेकिन बस यहीं तक समानता है शायद।
बिल्कुल, यहाँ का माहौल तो बिल्कुल नरक जैसा है, सच पूछो तो।
नरक जैसा क्यों?
ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादलों से ढका है, और यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब बेकाबू हो गया है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मोटी चादर है कि सूरज की गर्मी अंदर तो आ जाती है, पर बाहर नहीं निकल पाती। नतीजा, सतह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा।
सीसा पिघल जाए, इतनी गर्मी।
बाप रे बाप।
और सतह कैसी है?
ज्वालामुखियों से भरी हुई। मैगलन जैसे मिशन ने रडार से इसका नक्शा बनाया था।
तो शुक्र को देखकर हमें अपनी पृथ्वी की चिंता होनी चाहिए।
बिल्कुल, ये एक तरह की चेतावनी है कि अगर हमने अपनी जलवायु का ध्यान नहीं रखा तो क्या हो सकता है।
और फिर आती है हमारी प्यारी पृथ्वी।
हाँ, इस वीराने में एक हरा भरा नखलिस्तान। किताब इसे दूसरे ग्रहों से तुलना करके इसकी खासियत बताती है।
जैसे?
यहाँ का संतुलित तापमान, हमें बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, जीवन देने वाला तरल पानी,
और हमारी जमीन भी तो लगातार बदलती रहती है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स।
हाँ, ये सब चीजें इसे अनोखा बनाती हैं। जीवन के पनपने के लिए यहाँ बहुत ही नाजुक संतुलन बना हुआ है।
सही में, वो अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें देखकर एहसास होता है कि ये कितनी कितनी कीमती है।
बिल्कुल, अनमोल।
और पृथ्वी अकेली नहीं है, इसका एक साथी भी है, हमारा चांद।
हाँ, हमारा चंदा मामा। ये सिर्फ रात में रोशनी देने वाला गोला नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है।
और ये बना कैसे था, वो बड़ी टक्कर वाली थ्योरी है ना?
हाँ, माना जाता है कि अरबों साल पहले पृथ्वी से मंगल ग्रह जितना बड़ा कोई पिंड टकराया था, और उसी मलबे से चांद बना।
चांद पे वो काले धब्बे और चमकीले इलाके दिखते हैं।
हाँ, वो गहरे सपाट मैदान जिन्हें मारिया कहते हैं, वो पुराने लावा के मैदान हैं, और ऊंचे ज्यादा गड्ढों वाले पहाड़ी इलाके भी हैं।
अपोलो मिशन ने तो वहाँ इंसान भी उतारे थे।
हाँ, और आज भी ऑर्बिटर चांद का अध्ययन कर रहे हैं। और एक और जरूरी बात, चांद हमारी पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है।
अच्छा, उससे क्या होता है?
उससे मौसम ज्यादा बदलते नहीं, स्थिर रहते हैं, तो चांद का बड़ा रोल है हमारे जीवन में।
वाह, ये तो पता नहीं था। अच्छा, अब थोड़ा और दूर चलें।
हाँ, अब चलते हैं मंगल ग्रह की ओर, लाल ग्रह।
लाल ग्रह हमेशा से हमें लुभाता रहा है।
बिल्कुल, यहाँ सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ओलंपस मॉन्स।
हाँ, और वो बहुत बड़ी घाटी भी है, वैलिस मरीनरीस।
सही, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो इस बात में है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था, या शायद अब भी है।
हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है।
स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसीवियरेंस, इन रोबोटिक यानों ने पक्के सबूत भेजे हैं कि अरबों साल पहले मंगल गर्म और नम था, वहाँ नदियाँ थीं, झीलें थीं।
तो फिर क्या हुआ?
आज वहाँ पतला सा वायुमंडल है, बहुत ठंडा है, और धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या उस गर्म नम दौर में जीवन पनपा था?
या शायद आज भी जमीन के नीचे कहीं पानी हो और सूक्ष्म जीव हो?
हो सकता है, वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हैं। ये सवाल आज भी एक पहेली है।
मंगल के बाद क्या आता है? वो एस्ट्रॉइड बेल्ट।
हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच है एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रहों का घेरा।
फिल्मों में तो दिखाते हैं कि वहाँ यान चलाना बहुत मुश्किल है, हर तरफ पत्थर ही पत्थर।
नहीं नहीं, वैसा नहीं है, असल में वो ज्यादातर खाली जगह है। हाँ, उसमें लाखों चट्टानी टुकड़े बिखरे हैं, छोटे बड़े।
और ये हैं क्या?
ये सौर मंडल बनते समय बचे रह गए टुकड़े हैं, प्लैनेटिसिमल्स। बृहस्पति के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें पूरा ग्रह नहीं बनने दिया।
अच्छा, तो ये हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों की निशानियां हैं।
बिल्कुल, इनमें छोटी चट्टानों से लेकर सेरेस जैसे बौने ग्रह तक शामिल हैं। डॉन स्पेसक्राफ्ट ने सेरेस का चक्कर भी लगाया था।
दिलचस्प। अब आते हैं बाहरी ग्रहों पर, गैस के विशाल गोले।
हाँ, अब आते हैं दिग्गजों पर। सबसे पहले ग्रहों का राजा बृहस्पति,
जुपिटर। राजा नाम से ही लगता है।
और है भी, ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे ग्रह इसमें समा जाएं।
बापरे।
और ये बहुत तेजी से घूमता है, इसी वजह से इसके वायुमंडल में वो रंगीन पट्टियां, बैंड्स और जोन्स और भयंकर तूफान बनते हैं,
जैसे वो ग्रेट रेड स्पॉट।
हाँ, वो पृथ्वी से भी बड़ा तूफान है जो सदियों से चल रहा है, सोचिए।
गजब। और बृहस्पति के चांद, वो भी बहुत है शायद।
हाँ, ढेरों हैं, लेकिन चार सबसे बड़े, आयो, यूरोपा, गैनेमीड और कैलिस्टो। उन्हें गैलीलियो ने खोजा था, इसलिए गैलीलियन मून्स कहते हैं।
इनमें क्या खास है?
आयो पर तो सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, लगातार फटते रहते हैं। सौर मंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधि वहीं होती है।
और यूरोपा, उसके बारे में बहुत चर्चा होती है।
हाँ, यूरोपा की चिकनी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल नमकीन महासागर छिपा हो सकता है।
महासागर मतलब पानी?
हाँ, तरल पानी। वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ जीवन मिलने की काफी संभावना है। ये खोज के लिए सबसे अहम जगहों में से एक है।
वाह। और गैनीमीड?
गैनीमीड तो सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है, बुध ग्रह से भी बड़ा, और उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है।
और कैलिस्टो?
कैलिस्टो एक पुरानी गड्ढों से भरी दुनिया है। और हाँ, बृहस्पति एक तरह से सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी है।
वैक्यूम क्लीनर मतलब?
मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये अंदर के ग्रहों जैसे पृथ्वी को खतरनाक धूमकेतुओं और एस्ट्रॉइड से बचाता है, उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है।
अच्छा, तो बृहस्पति हमारा रक्षक भी है,
कह सकते हैं।
बृहस्पति के बाद शनि, वो छल्लों वाला ग्रह।
हाँ, शनि सौरमंडल का गहना, अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर।
वो छल्ले क्या है असल में? कोई ठोस पट्टी है?
नहीं नहीं, वो कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे बड़े टुकड़ों से बने, धूल के कण से लेकर घर जितने बड़े टुकड़ा तक, सब शनि के चारों ओर घूम रहे हैं।
कमाल है, कैसिनी मिशन ने तो गजब की तस्वीरें भेजी थी ना।
हाँ, कैसिनी ह्यूजेंस मिशन ने शनि, उसके छल्लों और उसके चांदों के बारे में हमारी समझ को बहुत बढ़ाया।
शनि के चांद, क्या वहाँ भी कुछ खास है?
ओ बिल्कुल, दो तो बहुत ही खास हैं। एक है टाइटन, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद।
टाइटन, हाँ सुना है।
इसकी खासियत है इसका घना नाइट्रोजन वाला वायुमंडल, कुछ कुछ जैसा शुरुआती पृथ्वी पर था।
अच्छा।
और इसकी सतह पर तरल पानी नहीं, बल्कि तरल मीथेन और इथेन की नदियां, झीलें और समुद्र हैं। सोचिए, एक पूरा अलग तरह का वाटर साइकिल।
अजीब है, मीथेन की बारिश।
हाँ, वैज्ञानिक इसे एक प्री बायोटिक प्रयोगशाला मानते हैं, जहां जीवन के शुरुआती रसायन बन सकते हैं।
और दूसरा खास चांद?
वो है एनसेलेडस। ये छोटा सा बर्फीला चांद है, लेकिन इसने सबको चौंका दिया।
कैसे?
इसके दक्षिणी ध्रुव के पास दरारें हैं जिन्हें टाइगर स्ट्राइप्स कहते हैं। वहां से पानी के वाष्प और बर्फ के कणों के फव्वारे निकलते देखे गए।
क्या फव्वारे? मतलब वहां भी पानी है?
हाँ, इसका मतलब है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे भी गर्म तरल पानी का समुद्र हो सकता है, एक और जगह जहां जीवन की संभावना तलाशी जा रही है।
ये तो अविश्वसनीय है, छोटे से चांद पर इतना कुछ
है ना।
अच्छा, शनि के बाद कौन? यूरेनस।
हाँ, यूरेनस, ये अपनी तरफ एक अजीब तरह से झुका हुआ ग्रह है।
झुका हुआ?
हाँ, लगभग 98 डिग्री पर, मतलब ये सूरज का चक्कर साइड पर लुढ़कते हुए लगाता है। ये पहला ग्रह था जिसे टेलीस्कोप से खोजा गया था, विलियम हर्शल ने 1781 में।
तो इस झुकाव से क्या होता है?
मौसम बहुत अजीब होते हैं। सोचिए, एक ध्रुव पर 42 साल लगातार दिन रहता है और दूसरे पर 42 साल रात।
बाप रे, 42 साल का दिन?
हाँ, ये ठंडा नीला हरा ग्रह है, इसके धुंधले से छल्ले हैं और कुछ बर्फीले चांद भी हैं। इसके पास से सिर्फ एक ही यान गुजरा है, वो वोएजर 2।
और ग्रहों में आखिरी
नेपच्यून।
सही।
नेपच्यून, ये भी बर्फ का विशाल गोला है, गहरे नीले रंग का।
ये तो सूरज से बहुत दूर है, वहां तो शांति होगी।
बिल्कुल नहीं, सूरज से इतना दूर होने के बावजूद ये एक बड़ा तूफानी ग्रह है। यहाँ सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा।
2000 किलोमीटर प्रति घंटा, बापरे।
हाँ, वोयाजर 2 ने यहाँ भी एक बड़ा काला धब्बा, ग्रेट डार्क स्पॉट देखा था, एक तूफान, पर वो बाद में गायब हो गया।
और इसके चांद?
इसका सबसे बड़ा चांद है ट्राइटन। ये बड़ा अजीब है।
क्यों?
क्योंकि ये नेपच्यून का चक्कर उल्टी दिशा में लगाता है, बाकी सब एक दिशा में घूमते हैं, ये उल्टा घूमता है।
ऐसा क्यों?
वैज्ञानिकों को लगता है कि ये शायद कहीं और बना था, कुइपर बेल्ट में, और बाद में नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया।
अच्छा, और ट्राइटन पर भी कुछ खास है?
हाँ, यहाँ भी बर्फ के ज्वालामुखी हैं जो जमी हुई नाइट्रोजन उगलते हैं। ये सौर मंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है।
वाह, बर्फ के ज्वालामुखी, ये सौर मंडल तो सच में अजूबों से भरा है।
बिल्कुल।
तो ग्रहों की यात्रा यहाँ खत्म होती है?
ग्रहों की हाँ, लेकिन सौर मंडल की नहीं। इसके बाद आता है सौर मंडल का तीसरा क्षेत्र, कुइपर बेल्ट।
कुइपर बेल्ट, यही तो प्लूटो है ना, जिसे अब ग्रह नहीं मानते?
हाँ, प्लूटो यही है। 2006 में उसे ग्रह का दर्जा छीनकर बौना ग्रह बना दिया गया था। कुइपर बेल्ट नेपच्यून के पार अरबों बर्फीले पिंडों का एक विशाल घेरा है।
और प्लूटो के बारे में क्या पता चला? पहले तो लगता था बस एक बर्फ का गोला है।
हाँ, यही सोचते थे, लेकिन 2015 में जब न्यू होराइजंस यान प्लूटो के पास से गुजरा तो सब हैरान रह गए।
क्यों, क्या मिला?
पता चला कि प्लूटो कोई शांत मरी हुई दुनिया नहीं है, ये बहुत जटिल और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है, जियोलॉजिकली एक्टिव। वहां नाइट्रोजन बर्फ के विशाल ग्लेशियर हैं, पानी की बर्फ के ऊंचे पहाड़ हैं, और एक पतला नीला वायुमंडल भी है।
सच में प्लूटो पर? ये तो वाकई चौंकाने वाला था।
बहुत। इस इलाके में एरिस और माकेमाके जैसे और भी बौने ग्रह हैं। ये सौर मंडल का एक भीड़ भाड़ वाला लेकिन कम खोजा गया इलाका है, एक नई सीमांत।
और धूमकेतु, वो कहां से आते हैं?
हाँ, धूमकेतु, कॉमेट्स, जिन्हें गंदे स्नोबॉल भी कहते हैं, ये बर्फ, धूल और चट्टान के गोले हैं जो भारी सौर मंडल से आते हैं।
और जब वो सूरज के पास आते हैं तो उनकी पूंछ निकल आती है।
बिल्कुल, सूरज की गर्मी से उनकी बर्फ और गैस उड़ने लगती है और वही हमें पूंछ की तरह दिखती है। कुछ धूमकेतु कुइपर बेल्ट से आते हैं, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, तो कुछ बहुत बहुत दूर के ऊट क्लाउड नाम के एक काल्पनिक बर्फीले बादलों के गोले से आते हैं, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स।
और टूटते तारे?
वो क्या?
उल्का पिंड या टूटते तारे असल में तारे नहीं होते। ये धूमकेतुओं या एस्ट्रॉइड्स के छोड़े हुए छोटे टुकड़े होते हैं, मलबा होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही तेजी से जल जाते हैं। वही हमें लकीर की तरह दिखता है।
अच्छा, तो ये थी हमारे सौर मंडल की यात्रा।
हाँ, और ये पूरी यात्रा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्या है।
एक्सोप्लैनेट्स।
हाँ, एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे तारों के चक्कर लगाने वाले ग्रह। आजकल वैज्ञानिक हजारों ऐसे ग्रह खोज चुके हैं।
तो अपनी प्रणाली को समझना उन्हें समझने में मदद करता है। बिल्कुल, और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं?
ये तो बड़ा सवाल है। तो इस पूरी किताब और इस यात्रा से कुछ खास बातें या कहिए सीख क्या निकलती हैं?
हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी सीख मेरे ख्याल से है पैमाने का एहसास।
पैमाने का मतलब साइज?
हाँ, विशालता का। हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस इतना बड़ा है कि उसे समझने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की सोच और किलोमीटर वाले पैमानों को भूलना होगा। वो संतरे और सुई की नोक वाला उदाहरण याद है ना?
हाँ बिल्कुल, दिमाग घूम जाता है सोचकर।
दूसरी सीख है विविधता और कह सकते हैं प्रचंडता।
प्रचंडता?
हाँ, सौर मंडल सिर्फ शांत और सुंदर तस्वीरों जैसा नहीं है। यहां शुक्र की भट्टी जैसी गर्मी है, आयो के ज्वालामुखी हैं, बृहस्पति के विशाल तूफान हैं। ग्रह सिर्फ कोमल गोले नहीं है बल्कि बेहद चरम और कभी कभी हिंसक जगह हैं।
सही कहा, हमारी पृथ्वी तो इनके मुकाबले बहुत शांत और संतुलित लगती है।
बिल्कुल, पृथ्वी सच में एक अपवाद है। जैसे जब हम मंगल की सूखी जमीन के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अपने यहाँ के मॉनसून की कीमत समझ आती है ना?
हाँ, ये तो है।
और तीसरी सीख?
तीसरी है पृथ्वी का अनोखापन और उसकी नाजुकता।
हाँ, ये बात तो शुक्र और मंगल को देखकर और समझ आती है।
बिल्कुल,
जब हम दूसरे ग्रहों के कठोर और बेजान माहौल को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी कितनी खास है और यहाँ जीवन का संतुलन कितना कितना नाजुक है। इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल सही। और चौथी?
चौथी सीख है इंसान की जिज्ञासा और खोज की जीत,
मतलब वो सारे मिशन, वॉयेजर, कैसिनी।
हाँ, वॉयेजर, कैसिनी, न्यू होराइजन्स, इन मिशनों ने अरबों किलोमीटर दूर जाकर ऐसी जानकारी भेजी है जिसने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। ये इंसान की जानने की इच्छा और इंजीनियरिंग का कमाल है।
सही में। और पांचवी
रही है।
वाह, तो ये पांच मुख्य बातें हुई। किताब में कुछ ऐसे विचार भी हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। जैसे एक विचार है कि हमें दूरी और समय की अपनी जमीनी सोच को छोड़ना होगा, उसे भूलना होगा, तभी हम ब्रह्मांड के असली मासताब, असली विशालता को शायद थोड़ा समझ पाएंगे।
ये मुश्किल है पर जरूरी है।
और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दूसरी दुनियाओं के बारे में जानना असल में हमें अपनी पृथ्वी की कीमत सिखाता है, उसकी नाजुकता दिखाता है।
हाँ, जैसे शुक्र की हालत देखकर हम अपने पर्यावरण के बारे में ज्यादा सतर्क हो सकते हैं, एक सबक है उसमें।
बिल्कुल। और ये कि अंतरिक्ष की खोज सिर्फ विज्ञान या तकनीक नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा की कहानी है। हम इन मशीनों को भेजते हैं, लेकिन इनके जरिए हम खुद ही ब्रह्मांड को और शायद खुद को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।
गहरा विचार है।
एक और जरूरी बात, सौर मंडल में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है।
हाँ, जैसे सूरज का गुरुत्वाकर्षण सबको बांधे रखता है
और बृहस्पति अंदर के ग्रहों की रक्षा करता है। ये एक जटिल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, कुछ भी अलग थलग नहीं है।
और आखिरी विचार,
वो ये कि ये सारी विविधता, चाहे वो टाइटन पर मीथेन की झीलें हों, या एनसेलाडस के बर्फीले फव्वारे, या ट्राइटन के बर्फ के ज्वालामुखी, ये सब उन्हीं भौतिक नियमों, लॉज ऑफ फिजिक्स का पालन करते हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर जानते हैं।
अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो हम यहाँ सीखते हैं वो हमें ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकता है।
हाँ बिल्कुल, नियम वही है, बस माहौल अलग है।
तो ये सब जान के, ये सारे विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या फर्क डाल सकते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है?
देखिए, एक तो ये हमें एक ब्रह्मांडीय नजरिया दे सकता है।
ब्रह्मांडीय नजरिया?
हाँ, जब हम इतनी विशालता, इतने बड़े समय के पैमाने के बारे में सोचते हैं तो अपनी रोज की चिंताएं, छोटी मोटी बातें थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। शायद ये हमें थोड़ा और विनम्र बनाए, थोड़ा और एकजुट करे।
ये तो अच्छी बात है।
और ये हमारी वैज्ञानिक समझ बढ़ाता है, साइंटिफिक लिटरेसी। अगली बार जब आप मंगल या किसी नए एक्सोप्लैनेट की खोज के बारे में खबर सुनेंगे या पढ़ेंगे
तो थोड़ा बेहतर समझ आएगा कि बात क्या हो रही है।
बिल्कुल। और ये विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित, स्टेम में रुचि भी जगा सकता है, खासकर बच्चों में। ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ किताबों का विषय नहीं बल्कि कितना रोमांचक हो सकता है।
हाँ ये तो है, विज्ञान एक एडवेंचर जैसा लग सकता है।
और जैसा हमने शुक्र और पृथ्वी के बारे में बात की, ये हमें पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकता है। दूसरे ग्रहों की कहानी हमें सिखाती है कि अपने ग्रह का ध्यान रखना कितना जरूरी है। ये कोई प्रैक्टिस रन नहीं है।
सही कहा, ये हमारा एक लौता घर है।
और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें आश्चर्य और विस्मय है।
विस्मय?
हाँ, रात के आसमान को सिर्फ कालेपन की चादर की तरह नहीं बल्कि अनगिनत दुनियाओं, कहानियों और संभावनाओं से भरे एक विशाल पड़ोस की तरह देखना, ये अपने आप में एक सुकून देने वाला, एक अच्छा अनुभव हो सकता है। थोड़ा सा जादू वापस लाता है जिंदगी में।
वाह, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। अच्छा, अगर आपसे पूछूं तो आपके लिए इस किताब से या इस चर्चा से सबसे चौंकाने वाले बात या पसंदीदा पहलू क्या रहा?
मेरे लिए शायद एनसेलाडस के वो पानी के फव्वारे।
हाँ, वो कमाल था।
एक इतने छोटे जमे हुए चांद से पानी निकलना, ये दिखाता है कि जीवन या उसकी जो जरूरी चीजें हैं वो कितनी अप्रत्याशित, कितनी अजीब जगहों पर मिल सकती हैं। हमें खुले दिमाग से खोजना होगा।
सही। और आपके लिए?
मेरे लिए शायद प्लूटो की कहानी।
अच्छा।
जिसे सौरमंडल का एक ठंडा मरा हुआ कोना माना जाता था, वो इतना सक्रिय और जटिल निकला।
हाँ, वो भी गजब था।
ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा और जानने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे अनुमान गलत भी हो सकते हैं और ब्रह्मांड हमें हमेशा चौंका सकता है। इस किताब की खूबी भी यही है, मुश्किल चीजों को शानदार तस्वीरों और आसान भाषा में समझाना।
बिल्कुल। तो इस सबके बाद मन में कौन सा सवाल सबसे ज्यादा घूम रहा है या कौन सा विचार रह गया है?
मेरे मन में तो वही सवाल है, क्या यूरोपा या एनसेलाडस की बर्फीली सतह के नीचे वाकई जीवन है किसी भी रूप में?
ये जानने की उत्सुकता तो बहुत है।
या ये कि इतनी सारी दुनियाओं के होते हुए, इतने सारे तारों के होते हुए, क्या हम सच में अकेले हैं? और अगर नहीं तो वो जीवन कैसा होगा?
और ये सब जानना, ये सोचना हमारे रोज के जीवन को कैसे बदलता है। अगली बार जब रात में तारे देखें तो क्या हम उन्हें बस रोशनी के बिंदुओं की तरह देखेंगे,
या फिर अरबों संभावनाओं से भरे एक विशाल अनजान ब्रह्मांड के दरवाजे की तरह? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।